ओम शांति। आज के इस भट्टी की शुरुआत योग से करते हैं। सभी स्थिर होके बैठ जाए और इस योग के साथ साथ अभी अभी जो महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए थे 18 जनवरी को, वह भी सुनेंगे। तो सभी तैयार? भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान स्वयं को देखेंगे। एक चमकता हुआ सितारा, भ्रुकुटी तत्व पर बैठा मैं एक चमकता जगमगाता सितारा, यह व्यक्त देह व्यक्त दुनिया ये संसार सबसे परे मैं आत्मा अति सूक्ष्म अनुभव कर रहा हूं स्वयं को। शरीरीपन का वह देह से परे स्थिति धीरे धीरे पंच तत्वों से बना यह देह प्रकृति के तत्वों में विलीन हो रहा है। और बच गई हूं केवल मैं आत्मा। सूक्ष्म देह सहित अब मैं जगत के पार चलती हूँ, अपने फरिश्ते स्वरूप में मैं आत्मा जा रही हूँ ऊपर, तत्वों से पार, इस दुनिया से परे, पहुंच गई हूं। सूक्ष्म वतन में अतिशय हल्का स्वरूप, सम्मुख स्वयं बाप दादा, बाबा की वह दृष्टि, बाबा के वह रूहानी नैन, और उससे बहती यह अमृत की धारा, पवित्रता की अनंत किरणें उसकी दृष्टि से मुझ पर पड़ रही है। बाबा मुझसे कुछ कह रहे हैं, उसकी वह व्यक्त आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। क्या कह रहा है वो? मैं आत्मा उसकी वह आवाज सुनने का प्रयत्न कर रही हूं, और धीरे धीरे वो स्पष्ट आवाज अब मुझे सुनाई दे रही है।
सदा खुश रहना और खुशी बनाना, जो भी आवे और कुछ नहीं बांटो तो खुशी तो है ना आपके पास, वो ही बांटो। बस खुशी आपस में बांटेंगे ना तो सारा वायुमंडल बदल जाए। खुश रहना अच्छा है ना, कोई भी आवे, ये क्या है, ये खुशी का महल है। सब खुश है, जाके पूछो किससे भी तो खुशी है या नहीं है, क्या कहेंगे, खुशी है? हाँ तो हाथ उठाओ। देखो सब खुश है, खुश रहो बस। बाबा मिल गया। अभी तो बाबा जा ही नहीं सकता, तो इसीलिए खुश रहो, बस अभी रोना बदोना ये सब खत्म, अभी मुस्कुराते रहो, जो भी जिससे मिले मुस्कुराते। बस मेरा बाबा और मैं अभी क्या करेंगे, काम करो लेकिन खुशी खुशी से करो। समझा क्या करना है, खुशी नहीं छोड़नी है, खुशी साथ में रखनी है।
धरती बोली अंबर बोला सागर तेरा ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया न्यारा सबसे।
बाबा का यह आवाज हृदय में छप गया है, बाबा अब मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे सदा खुश रहो, खुशी के महल भवो और सदा यह खजाना बांटते रहो। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, इस वरदान को लेकर मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापस नीचे आ रही हूं। पुनः इस व्यक्त देह में मैं आत्मा प्रवेश करती हूं। तो वरदान पा लिया सभी ने बाबा से, बाबा ने कहा खुशी के महल, कोई भी आए तो क्या देखे कि ये तो कौन है, खुशी के महल है। बाबा ने झोली किससे भर दी, खुशी से। 18 जनवरी की मुरली, वरदानों से 18 जनवरी की मुरली, झोली बाबा ने किससे भर दी। प्यार की झोलिया भर गई। और दिल में क्या है मेरा बाबा, और दिल में क्या है, खुशी का खजाना। तो बाबा ने हम सभी को अभी अभी वरदान दिया है खुशी का। ऐसा क्या है इस खुशी में जो बाबा बार बार कहते रहता है, खुश रहो खुश रहो, बाप मिला है तुमको इसलिए खुश रहो, खुशी बांटो, खुशी खजाना है। कितने सारे महावाक्य है बाबा के। तो आज इस भट्टी की शुरुआत हम इसी मुरली से करेंगे। और जैसे बहन जी ने कहा कि आज कौन सी तारीख है, 21 तारीख, सबसे पहली अव्यक्त वाणी आज के दिन चली थी, आज ही अंतिम संस्कार हुआ था बाबा का, एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा ये अस्थिया अव्यक्त स्थिति की याद दिलाएगी, यह अस्थिया अव्यक्त स्थिति की याद दिलाएगी। तो मुरली की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। बहुत बहुत लंबे समय पहले की बात है, मनुष्य के मन में जितनी भावनाएं हैं, जितनी फीलिंग्स है, जितने इमोशंस है, जज्बात है, उन सभी भावनाओं ने सोचा कहीं पिकनिक के लिए जाए। भावनाओं ने सोचा कहीं पिकनिक के लिए जाए और उन्होंने एक अति सुंदर टापू चुना और सारी भावनाएं वहां पहुंच गई। दृश्य बहुत सुंदर था, समुद्र के बीच वो टापू था, सभी भावनाएं वहां खेल पाल करने लगी और धीरे धीरे अचानक से तूफान के दृश्य दिखाई देने लगे। तो सभी भावनाओं ने अपना अपना जहाज पर जाकर बैठ गई, परंतु एक भावना ऐसी थी जिसका नाम था प्रेम, लव, वो खेलती रही। परंतु एक समय ऐसा आया जो कहा कि सब भावनाएं अपने अपने छोटे छोटे जहाज पर जा बैठी और निकलने लगी और प्रेम जैसे पीछे छूट गया। और जब तूफान बहुत अधिक बढ़ गया तो उसने देखा कि सुख जा रहा है, उसके लिए कोई नाव बचा नहीं था प्रेम के लिए। तो उसने सुख से कहा कि क्या मैं तुम्हारे जहाज पर आ सकता हूं। तो सुख ने कहा नहीं, मेरे जहाज पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है और मैं अपने ही सुखों में खोया हुआ हूं। उस प्रेम ने फिर देखा एक तरफ अहंकार एक नाव पर बैठा था, तो उस प्रेम ने अहंकार से पूछा कि भैया मैं तुम्हारे नाव पर आ जाऊं। उसने कहा नहीं, तुम्हारे गंदे पाव मेरे नाव को गंदा कर देंगे। तो प्रेम ने देखा दुख अपने नाव पर सवार, तो दुख से पूछा क्या मैं तुम्हारे नाव पर आ जाऊं। दुख ने कहा नहीं, मैं अपने ही दुख दर्द में इतना खोया हूं, तुमको कहां से लूं। फिर उसने देखा एक नाव में लोभ सवार था, उसने लोभ से पूछा क्या मैं तुम्हारे नाव पर आ जाऊं। लोभ जिसके नाव में बहुत सारा सोना और चांदी था, उसने कहा जगह नहीं है, कहां रखूं तुमको। और अचानक पीछे से आवाज आई कि तुम मेरी नाव पर आ जाओ। और उस नाव पर प्रेम बैठ गया और किनारे पहुंच गया। किनारे जब पहुंचा तो वहां पर ज्ञान खड़ा था। उसने उस ज्ञान से पूछा, ये कौन था जो मुझे छोड़ आया, किसकी ये नाव थी, जब किसी ने मुझे अपने नाव पर नहीं लिया तो ये कौन खिवैया था जो मुझे छोड़ आया। तो ज्ञान ने क्या कहा होगा, खुशी ना। कौन था वो जो प्रेम को ले आया, बाबा ले आया। भावनाओं के इस टापू में बाबा क्या कर रहा था। ज्ञान तो उसे समुद्र तट पर मिला, याद प्यार त्याग, अच्छा और कौन स्नेह, स्नेह ही तो, स्नेह कोई तो ले आया। ज्ञान ने कहा केवल समय ही तुम्हारे महत्व को जानता है, जो तुम्हें ले आया वो नाव समय की थी। तो प्रेम का महत्व कौन जानता है, समय जानता है। और इस ब्राह्मण परिवार को जिस भावना ने एक कर रखा है वो कौन सी भावना है, प्रेम की भावना। इस मुरली में बाबा ने शुरुआत बहुत अच्छी की है, बेहद की सभा है, बेहद के मैदान में सब इकट्ठा हुए हैं, बेहद का अनुभव कर रहे हैं, बेहद का परिवार है। कैसा परिवार है, बेहद का परिवार है, बेहद का परिवार, बेहद की सभा, बेहद का मैदान, बेहद का अनुभव। इस बेहद की सभा को एक प्रेम है जिसने बांध रखा है। कैसी दृष्टि होगी उसकी जो ये सब बोल रहा है। और एक चीज बेहद की थी, कौन सी, कौन बताएगा। पांच बातों के लिए बाबा ने बेहद शब्द का प्रयोग किया, बेहद का मिलन, बोल मैदान तो बोल दिया, बोल बेहद का मैदान, बेहद की सभा, बेहद का अनुभव, बेहद का परिवार, और पांचवा बेहद कौन सा था, सभी कौन सी स्थिति में स्थित है। बेहद की स्थिति में सभी स्थित है, ऐसे लग रहा है जैसे हम पहले मिले ही हुए थे, ऐसे लग रहा है जैसे छोटा सा परिवार एकत्र हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे हम खो गए थे फिर से आकर मिले हैं। सुना ना बाबा की मुरली, कैसी दृष्टि है उसकी जो ऐसे महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। हद में है ही नहीं, हद से बेहद में आ गए हो, अनलिमिटेड में, असीम में। बेहद की दृष्टि हो गई है, बेहद की स्थिति हो गई है, वृत्ति दृष्टि बोल कृति संकल्प वाइब्रेशंस सकाश सब कुछ बेहद की। तो भगवान जब इस धरा पर आता है तो कैसे बोलता है, कैसे देखता है, क्या उसकी भावनाएं हैं, क्या उसके मन में संकल्प है, कितने ऊंचे है सब कुछ। यहां बैठता है स्पीकर, ऑडियंस नीचे है, कैसे एक हो जाए दोनों, दोनों के संकल्प, दोनों के बोल, दोनों की स्थिति। तो बाबा ने कितनी ऊंची दृष्टि बताई कि क्या कर दो, स्वयं को बेहद के अनुभव कराओ। बेहद के अनुभव सभी कर रहे हैं, बाबा ने कहा, छोटे मोटे अनुभव नहीं, बेहद के अनुभव, ऊंचे अनुभव, अध्यात्म के अनुभव, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव। पिछले बार बाबा ने कहा था, योगेश्वर बनना है तो क्या करो, योगेश्वर की लाइन में आ जाओगे अगर बीच बीच में अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति का अभ्यास करो। एक सेकंड में मनमना भाव, एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक जाओ, आधा घंटा, एक घंटा, दो मिनट, एक स्थिति, अलग अलग टाइम और अलग अलग शब्दों का प्रयोग। तो बाबा चाहते हैं कि हम हद में ना फंसे रहे। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज या मेरा सेंटर या मेरा राज्य या केवल मेरा देश, हदों से निकलकर बाहर बेहद में चलना है। अब जो स्थिति है हद की शायद हो सकती है, उससे भी निकल स्वयं को ऊपर उठाना है। और कौन ऊपर उठा सकता है स्वयं को, हम स्वयं, गिरे हम हैं, उठाना स्वयं को स्वयं है। अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना, स्वयं को बेहद के अनुभव कराना। और एक बात, बेहद का परिवार, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बेहद का परिवार क्या होता है, और इस बेहद के परिवार में और वह हद के परिवार में चलने के लिए किन धारणाओं की आवश्यकता है, एक तो इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी, जैसे बात कही, खुशी, खुशी के महल, कोई भी आए तो देखे जैसे कि ये खुशी के महल है। खुश रहो क्योंकि तुम्हें बाप मिला है। हम संसार में खुशी बांटने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही कहीं ना कहीं दुखी है। सारे जगत को खुशी का पाठ पढ़ाने वाले हम हैं, कहीं हमारे हृदय में किसी कोने में कोई दुख बैठा तो नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था ना, रोना बंद, जो रोते हैं वो कौन है, विधवा। बाबा के पास अगर कोई माता आती थी ब्रह्मा बाबा के पास और रोते हुए किसी भी कारण से, बाबा पूछते थे, क्या हुआ, तुम्हारा पति मर गया क्या? ऐसे वो कौन से कारण है, उनकी हम चर्चा करेंगे। जो ब्राह्मणों के हृदय में दुख बने बैठे हैं, वह ब्राह्मण जिन्होंने भगवान को पा लिया, जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान है, कर्म की गति का ज्ञान है, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं सीखते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते, सारी धारणाओं का पालन करते हैं, फिर भी वो कौन से कारण है जिनके वजह से दुख की महसूसता होती है, और क्या वो विधि है, और क्या वो करे कि जिससे आत्मा इस दुख के जंजाल से मुक्त हो जाए, उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तीसरी, बाबा ने बात कही थी मिलन की, ये मिलन कैसा है कौन बताएगा? बेहद का मिलन है, और वंडरफुल मिलन है ये, क्योंकि किसका मिलन है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। और कैसा मिलन है ये, 18 जनवरी की मुरली से बताओ, रूहानी, और 18 जनवरी की मुरली से, ये मिलन साधारण मिलन नहीं है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है, यह मिलन मधुर मिलन है, यह मिलन मीठा मिलन है। इस मिलन और ये मिलन यदि सदा होते रहे उसके लिए क्या करने को कहा बाबा ने? एक बात करने को कही है जिससे ये मिलन सदा होते रहे। कौन सी वो बात है? इस मिलन को याद करते रहो। क्या करो? इस मिलन को याद करते रहो। मिलते मिलते मिल जाएंगे, मिलते मिलते मिल जाएंगे। परंतु मिलना और बिछड़ना ये ड्रामा का वंडरफुल पार्ट है, ये भी बात बाबा ने कही है। अब बाबा मुरलियां नहीं चला रहे हैं, जो कुछ बाबा को कहना था बाबा कह चुके हैं। हम हमेशा कहते हैं एक मुरली हमें याद आती है 26 जून की 69, 26 जून 69 की, जिसमें बाबा ने तब कह के रखा था कि अब पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई कब पूरी हो गई है? 69 में। अब बाप आते हैं मिलने के लिए। और बाबा ने 69 की मुरली उस जो अव्यक्त वाणियां चलाई उसमें इतनी गहरी गहरी बातें कह दी है, साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, धर्म की, धारणाओं की, इतनी गुह्य बातें कह दी है। सब कुछ कह चुके हैं बाबा, परंतु शायद हमने एडमिशन लेट ली है। परंतु एडमिशन लेट अगर कोई ले, जनवरी से स्कूल चालू हुई, किसी ने एडमिशन मई में ली, परंतु एग्जाम सबकी दिसंबर में है, दिसंबर में फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने एडमिशन लेट ली, ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। जीवन में ये जो समस्या आ रही है, किसी आत्मा के द्वारा विघ्न आ रहा है, इसके बारे में तो बाबा ने कुछ कहा ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते? क्या वो सारी मुरलियों का हमने अध्ययन कर लिया है? पढ़ाई में लेट पहुंचे हैं? दादी जब पहली बार, दादी जानकी जब ज्ञान में आए, उनके पहले कई सारी दादी आ चुकी थी। दादी को इतनी चिंता हुई, मैं क्या करूं, कितना लेट हो गया है मुझे। दादी को तब लग रहा है कि आई एम लेट, मैं बहुत लेट हो गई हूं। बाबा से पूछा था, सबको पता है क्या करूं, बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो। दादी का क्या उत्तर था? 24 बार पढ़ेंगी। 24 बार पढ़ना कोई मासिक अगर नहीं है। रोज मुरली पढ़ता कौन है वो हाथ खड़े करो। पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले, सोच समझ कर हाथ खड़ा करना, पढ़ने वाले। एक बार कौन कौन पढ़ता है? और दो बार, तीन बार, तीन बार वाले भी है, चार बार कम है। क्या एक बार पढ़ने से समझ में आ जाती है? ये नया ज्ञान है नई दुनिया के लिए, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। भक्ति में हम शास्त्रों को क्या कहते हैं? पाठ करते हैं। गीता पाठ, पाठ अर्थात एक बार नहीं, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार पढ़ने के बाद ही थोड़ा कुछ समझ में आता है। इसके लिए केवल सुनना, किसी एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है, सेंटर पर गए, मुरली सुनी और आ गए, ये है पुरानी चाल, ये है पुरानी चाल। नए युग में जाना है तो अभी थोड़ी नई चाल अपनानी पड़ेगी। तो तीन बातों पर चर्चा करेंगे और साथ साथ बीच बीच में योग भी करेंगे। तो बाबा ने सबसे पहली बात बेहद की स्थिति के बारे में कहा और बेहद में रहने के बारे में कहा, दूसरा खुशी के बारे में कहा और तीसरा मिलन के बारे में कहा। खुशी से चालू करते हैं। खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बाबा ने कहा है काम करो, काम करते करते परंतु बाप को नहीं भूलो, यदि बाप को भूले तो दुख पाएंगे, बाप को भूले तो दुख पाएंगे। और काम भी कैसे करना है, हंसते हंसते करना है और खुशी खुशी से करना है, मुस्कुराते हुए करना है। ये बाबा ने काम दिया है, काम तो करना ही है पर ये इस तरह से वो काम करना है, इस तरह से वो सेवा करनी है। तो हम बात कर रहे थे खुशी की, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो आ जाती है और चित्त को दुखी कर जाती है, और क्या हम करें जिससे निरंतर खुशी में रहे, जिससे पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम ही ना हो। आज अगर संसार में देखो चारों ओर दुख ही दुख है, मायावी दुख। आज की साकार मुरली में एक शब्द आया है, आज सुबह की मुरली, हे पतित पावन आओ इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। संसार में दुख ही दुख व्याप्त है सब जगह, हर घर में जाओ कोई ना कोई दुख है, हर मन में दुख बसा हुआ है, डूबी हुई आत्माएं अपने ही दुखों में, दर्द है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, पश्चाताप है, कहीं कहीं शारीरिक कर्म भोग है, कड़े हिसाब किताब है, कितने सारे कारण है, भय है, अज्ञात से भय है, पता नहीं क्यों दुखी है परंतु दुखी है, दुख का कोई कारण नजर नहीं आता परंतु दुखी है, डिप्रेस्ड है, अवसाद ग्रस्त है। इस वातावरण में बाबा कहते हैं खुशी के महल तुम हो, इस वीरान बस्ती में, इस दुखों की बस्ती में हम कौन हैं, खुशी के महल, ताज महल, शीश महल। तो क्या मैं ऐसी खुशी से भरपूर हूं या झूठी झूठी खुशी है, दिखावे वाली खुशी है, सेंटर पर आकर दिखाने के लिए है कि हम खुश है पर अंदर अंदर से मीरा रोए छुपके छुपके, मेरे दर्द न जाने कोई, ऐसी स्थिति तो नहीं है। सारी सेवाएं कर रहे हैं ऊपर से परंतु अंदर में दुख बैठा है कांटे की तरह। दांत दर्द जब होता है ना, दांत का दर्द जब होता है, अगर दर्द की गोली कोई न ले तो वो निरंतर याद रहता है। दिन भर सारे काम करते रहो परंतु ध्यान उस दांत की तरफ, उस दाढ़ की तरफ रहता है, कहीं ऐसा कोई दांत का दर्द की तरह दुख किसी भी कारण से अंदर बैठा तो नहीं है। कितनी सारी मुरलियां हैं जिसमें बाबा ने कहा है खुश रहो और खुशी बांटो, खुश रहो और खुशी बांटो, भगवान के बच्चे और दुखी हो नहीं सकता। खुशी का खजाना, नौ खजाने भक्ति में गिने हैं, गिनाए गए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, यहां पर भी नौ खजाने हैं। उन नौ खजानों में से एक खजाना है खुशी। बाबा खजाने की कैटेगरी में रख रहा है खुशी को, खजाने की श्रेणी है, ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प पवित्रता खुशी दुआएं पुण्य कर्म, ये सारे नौ खजाने हैं। ज्ञान गुण शक्तियां, समय, संकल्प, दुआएं, पुण्य कर्म, खुशी, पवित्रता। खजाने तो अनगिनत है, संतुष्टता भी खजाना है, पवित्र बोल भी खजाने हैं, परंतु मुख्य रूप से बाबा ने ऐसे 9 खजाने गिनाए हैं, उनमें खुशी एक महत्वपूर्ण खजाना है। तुम्हारा हाथ किसमें, किसके हाथ में है? दादी जानकी ने बाबा से हाथ मिलाए तो बाबा ने क्या कहा? केवल एक का नहीं, सबका हाथ बाप के हाथ में है। साथ किसका है? उसका। तो उसको तो पा लिया, अपने जीवन को अर्पण कर दिया उसकी सेवाओं में, पर क्या फिर भी कहीं ना कहीं कोई दुख बैठा है? और यदि है तो वो कौन सा? तो आप सभी से प्रश्न है, ब्राह्मणों के दुखों के क्या क्या कारण हैं? संसार की आत्माओं के नहीं, ब्राह्मणों के, क्योंकि हम सब आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, हम जड़े हैं। अभी एक मुरली चली थी, जगत माता। क्या समझना है? स्वयं को जगत माता समझना है, आत्माओं की पालना करनी है। अभी लास्ट संडे भी एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा था प्रेम की पालना, संबंध का रस केवल यहां है। तो ऐसी हम श्रेष्ठ आत्माएं, कहीं हम ही दुखी तो नहीं है? तो वो क्या कारण हो सकते हैं दुख के? व्यर्थ बोल, उसके भी कारण भगवान को पूरा पहचाना नहीं। आज सुबह की साकार मुरली में ऐसा ही एक महावाक्य है, कौन सा, कौन बताएगा? तुमने मुझे पहचाना है। बाप है हाईएस्ट ऑथोरिटी। बाप क्या है? हाईएस्ट ऑथोरिटी। और तुमने मुझे पहचाना है, भाग्यवान हो तुम आत्माएं। तो परंतु क्या उसको हमने पूरा पहचाना? हम कहते तो है कि हमने उसे पहचाना, परंतु क्या वास्तव में हमने उसे पहचाना? उसके मन में क्या है, माइंड ऑफ गॉड क्या है, क्या वास्तव में जाना है? उसको पहचानना अर्थात क्या करना पड़ेगा पहचानने के लिए? यदि हम कहें कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उसको मैं पहचानता हूं, क्या मान लेंगे? और बहुत अच्छे से पहचानता हूं, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके साथ, उसके, उसको पहचानने के लिए? उनके लेवल का बनना पड़ेगा, और एक चीज करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा। जितना मैं ज्यादा उस व्यक्ति के साथ रहूंगा तभी मैं जान सकूंगा ये क्या है, कैसा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है। जिसका जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों? मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? मैं हूं आवाज से परे, तुम इतना ज्यादा आवाज में क्यों? इन्वर्टेड कॉमा। अगर उसको हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ रहना पड़ेगा। उसके साथ का अनुभव, उसके प्यार का अनुभव, उसकी मदद का अनुभव। साथ का अनुभव, प्यार का अनुभव, मदद का अनुभव। जहां हम जा रहे हैं वो साथ है। हर जीवन के पड़ाव में उसकी मदद, हर समस्या में, अप्स एंड डाउन्स जो कुछ जीवन में होता है, यह अनुभव कि वो साथ है, उसकी मदद साथ है, ये हो जाना अर्थात हम उसके साथ है, अर्थात हम उसे जानने लगे हैं। और हम उसे शायद पूरा नहीं जानते, इसीलिए दुख आ जाता है। तो एक कारण है उसे हम नहीं जानते, उपाय है उसे जानना, कैसे उसके साथ रहना, बार बार उसका आह्वान करना, दिनचर्या में दिन भर किया जाओ, कोई भी कार्यक्रम हम करने हम जा रहे हैं उसे बुलाना, महसूस करना कि वो साथ है। जबकि भक्तों ने ये महसूस किया, हर समय भक्तों को अनुभव होता था कि वो है, जबकि उन्हें पूर्ण परिचय नहीं था, और हमें संपूर्ण परिचय है। बाबा ने कितनी बार कहा है, तुम पुकारो और मैं हाजिर, बाप को यूज करो, बाप को यूज करो। हम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। एक तो कारण ये हुआ, दूसरा कारण दुख का, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, मधुबन से प्यार, यज्ञ से प्यार, प्यार और परिवार से प्यार, ये चारों ही परिभाषा बाबा ने दी है अलग अलग मुरलियों में। जब तक इन चारों ही चीजों से प्यार नहीं, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारा बाप से प्यार है। बाप से प्यार है परंतु ये परिवार वाले ठीक नहीं है, सारी माया इधर से ही है, और यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि भक्ति में हमने कभी भगवान को बोला ही नहीं था। ये तो कहा था कि तुम आ जाना, पर ये कहा था कि साथ में परिवार भी ले आना, हमको तो पता नहीं था, हमने तो उसे पुकारा था, साथ में ये परिवार भी आ गया, क्योंकि ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुक्तु होने है। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है ये, संसार वालों के साथ इतने हिसाब किताब नहीं है, कहां है ब्राह्मणों के साथ। कोर्स कराते समय ये पॉइंट बताई थी बहन जी ने। ये तो हमें जैसे जैसे ज्ञान होता है पता चलता है सूक्ष्मता। तो इसको समझना, बाबा से प्यार का कम होना ये कारण है दुख का, ये दूसरा कारण है। पहला तो कारण बताया, उसको समझा नहीं है, समझने के लिए उसने जो कहा है उसे पढ़ना होगा, उसकी वाणियां बिखरी पड़ी है, वो सारी वाणियों का जब तक हम स्टडी नहीं करते तब तक बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आ सकती है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये, यहां बाबा ने कई बार कहा है तुम्हें पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। तो दूसरा कारण उससे प्यार की थोड़ी कमी। बाबा ने यह भी कहा है जब बाप कहते हैं कि किस किस का बाप से प्यार है तो सब हाथ खड़ा करते हैं, परंतु परमात्मा प्रेम पर 70s और 80s में ऐसी ऐसी गहरी मुरलियां चली है कि वो यदि हम पढ़े तो हमें लगे शायद कि थोड़ा पीछे कदम रखना होगा। प्रेम की जो परिभाषा बाबा ने दी है, परमात्मा प्रेम किसे कहते हैं, तो एक कारण यह भी हो सकता है कि प्यार की थोड़ी कमी है, नस नस में वो अभी समाया नहीं है। बाप के मस्तक में क्या और बच्चों के मस्तक में क्या, 18 जनवरी की मुरली, बाप के मस्तक पर बच्चे और बच्चों के मस्तक पर बाप, क्या हमारे मस्तक पर वो है? स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है। तीसरा कारण दुख का, इच्छाएं, भगवान के बन गए, वो संसार छूट गया, फिर भी उस संसार की इच्छाएं, वो इच्छाएं दौड़ाती है, यहां आ गए सब कुछ मिल गया ये अनुभूति भी है, परंतु वो इच्छाएं छोड़ती नहीं है। हम अगर ब्रह्मा बाबा के जीवन का अध्ययन करें, सारा ही जीवन, लौकिक भी श्रेष्ठ था तो अलौकिक भी श्रेष्ठ, जैसे ही भगवान का ज्ञान हुआ, वो सारे साक्षात्कार हुए, स्वयं को समेटना चालू किया बाबा ने, सारा कारोबार अपने मित्र को दे दिया। इतना अमीर व्यक्ति पत्थर उठाने लगा। बाद में दिखाया है बाबा के जीवन चरित्र में, ब्रिजकोठी में पांडव भवन जब पोखरान हाउस था, तब जगदीश भाई ने भी अपने अनुभव में लिखा है, जब पहुंचे पहली बार तो देखा एक व्यक्ति पत्थर उठा रहा है। कैसा वो निश्चय होगा, कौन आया है इस तन में। तो जैसे ही परमात्म ज्ञान मिला, स्वयं को समेटना चालू किया। संसार की जो दौड़ है वो असीम अनगिनत, उसमें तो कोई अंत ही नहीं है। हमें हमेशा एक कहानी बहुत अच्छी लगती है जिसमें दिखाया है, विदेश की कहानी है, लियो टॉलस्टॉय नाम का एक लेखक है जिसकी लिखी हुई, दिखाया है एक व्यक्ति, एक किसान है गरीब, उसे एक रात उसके यहां सन्यासी आने आता है और वो सन्यासी उसे कहता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम वहां जाओ, उधर सुमेरिया दूसरा एक देश है, वहां जाओ, वहां बहुत जमीन सस्ती है। वो किसान रात भर सोचता है मुझे जाना ही चाहिए, कब तक इस तरह मजदूरी करता रहूं। अपना सब कुछ बेच के उस देश में पहुंचता है और वहां पर पूछता है, यहां जमीन की कीमत क्या है। लोग कहते जमीन की कीमत, यहां जमीन मुफ्त मिलती है, पर एक शर्त है, शर्त कहो या जो भी, जितना ये लकीर है, इस लकीर से तुम जितना भी भागोगे, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, वो सारी जमीन तुम्हारी। इतना सस्ता सौदा है। रात भर वो सोता नहीं है, सोचता है क्या करूं और क्या नहीं, कितनी जमीन लूं। और सुबह सुबह पहुंचता है वहां पर, सारा गांव एकत्र होता है और वो दौड़ना चालू करता है। थोड़ा सा खाना लेता है, थोड़ा सा पानी लेता है अपने हाथ में और चलने लगता है, क्योंकि जितना चलोगे उतनी जमीन मेरी, ये सोचते हुए। फिर धीरे धीरे सोचता है, मैं चलूं क्यों जब मैं दौड़ सकता हूं, दौड़ूंगा तो ज्यादा जमीन मिल जाएगी। तो दौड़ना चालू करता है, दौड़ते रहता है। फिर सोचता है, प्यास लगती है, थोड़ी भूख लगती है, तो सोचता है अभी अगर खा लूं तो रुकना पड़ेगा, बाद में तो खाना ही है जीवन भर। सोचता है खड़े खड़े खा लूंगा, चलते चलते दौड़ते दौड़ते अभी नहीं खाऊंगा। वैसे ही भागते रहता है। प्यास लगती है, सोचता है पानी पीना तो बाद में भी हो जाएगा, पानी की बोतल फेंक देता है। फिर और दौड़ता है, सोचता है ये भोजन का भी वजन हो रहा है, इसको भी फेंक देता हूं, भोजन को भी फेंक देता है और दौड़ते जाता है। दोपहर ही हो जाती है, सूरज ऊपर आ जाता है, क्योंकि एक लक्ष्य ये भी था कि वापस भी लौटना है, जहां से शुरुआत की है वहीं पर लौटना भी है, यही शर्त थी। परंतु सोचता है जब दोपहर ही हो जाती है, इतना भाग के हुए भागता है और हाँफता है। और जब सोचते हैं अब पीछे मुड़ू तो देखता है सामने की जो जमीन है बहुत ही सुंदर है। लौटना तो चाहिए, परंतु सामने वाली जो जमीन दिखाई दे रही है बहुत अच्छी है, थोड़ा सा दौड़ लेता हूं फिर चला जाऊंगा। और दौड़ता है। एक बजता है दो बजे तो सोचता है अभी लौटना ही चाहिए, परंतु सामने की जमीन तो और ही ज्यादा उर्वर, उपजाऊ ऐसी दिखाई पड़ रही है, क्यों ना थोड़ा सा और भाग लूं, बाद में तो आराम ही करना है। और भागता है और हाँफता है। और एक समय आता है कि सोचता है अब तो लौटना ही पड़ेगा, और वहां से लौटना चालू करता है, फिर से भागना चालू करता है। थका हुआ भाग रहा है तेजी से, क्योंकि बहुत आगे निकल चुका है और सूर्यास्त अभी होने वाला है। दिखाई देते हैं गांव के सारे लोग दूर एकत्र हुए हैं और उसे पुकार रहे, आ जाओ। उसे हिम्मत आती है, भागता है। सूर्यास्त बस होने ही वाला है, पहुंचता है थोड़ी, बस लकीर को अभी स्पर्श ही करने वाला है और धड़ाम से गिरता है उसके पहले ही और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। ऐसा क्यों हुआ? माताओं की तरफ से बताएंगे पहले, फिर भाइयों की तरफ। संतोष नहीं है, एक कारण बताया असंतुष्टता, दूसरा कारण लोभ, तीसरा कारण इच्छा। इच्छा और लोभ एक ही हो गया, ज्यादा, अच्छा ज्यादा इच्छा, ठीक है, इच्छा बहुत ज्यादा, और आसक्ति मोह लोभ एक ही कैटेगरी है। दूसरे बताओ भाइयों की तरफ से, इसके अलावा और कोई कारण है? हाँ, मन का पूरा मेरा है ऐसा सोच लिया। ज्ञान, कौन से ज्ञान की कमी? समझ की कमी, कौन से समझ की कमी? ऐसा क्यों हुआ? वो तो बोल दिया आपने, असंतुष्टता है, लोभ है, इच्छाएं ज्यादा है, इसके अलावा समय का ज्ञान नहीं था, समय गलत हो गया, अब समय था लौटने का। कौन सा समय था? लौटने का समय था, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, थोड़ा सा और ले लूं फिर लौटेंगे। भगवान आकर द्वार पर खड़ा है कि चलो वापस चलने, तुम्हें ले जाने मैं आया हूं। अगर नहीं भी चलो, मानो या ना मानो, तुम्हारे शरीरों को जलाकर, साकार महावाक्य है, तुम्हारे शरीरों को जलाकर मैं तुम्हारी आत्माओं को ले जाऊंगा, चाहे मानो या न मानो। तो जबरदस्ती चलेंगे कि खुशी खुशी से डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो तो उसके नैनों पर बिठाकर वो ले जाया जाएगा। बाबा ने कहा है अंत में तुम ऐसे शरीर छोड़ोगे तुम्हें पता ही नहीं होगा, परंतु कौन जो योग युक्त होंगे उन्हें ये आभास ही नहीं होगा कि कब हम इस देह से चले गए। परंतु ब्राह्मण बनने के बाद भी जिन्होंने श्रीमद की अवहेलना की, उल्लंघन किया, पाप किए, कौन से आंसू बहाने पड़ेंगे? खून के। अज्ञान में एक का एक गुना, ज्ञान में एक का 100 गुना। बाप भीख मांगते हैं, साकार महावाक्य है बाबा के, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, बच्चे पवित्र बनो। वासनाओं का ये मार्ग, अपवित्रता का ये मार्ग, विकारों का ये मार्ग छोड़ो। यदि उसकी इस आज्ञा को नहीं माना तो कौन से दंड हमारे लिए होंगे? बाप धर्मराज का रूप धारण करेगा। कड़े महावाक्य है बाबा के पवित्रता के लिए। तो जीवन की इस दौड़ में हम कितना दौड़े, अब समेटने का समय है। अंतहीन है इस जगत की खोज, कितना भी पालो, कितना भी पालो, अपूर्ण ही रहता है। वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं दुष्पूर है, कभी पूर्ण न होने वाली। अभी अभी कुछ पाया कि वो व्यर्थ हो जाता है, दूसरा चाहिए, दूसरा पाया वो व्यर्थ हो जाता है, फिर और कुछ चाहिए। ये जो खेल है, लहरें है, लहरें कभी बंद नहीं होती है, आती ही रहती है, आती ही रहती है। यदि ऐसा हमारे जीवन में है कि हम इस संसार की दौड़ को अब भी नहीं रोक रहे, जबकि भगवान आ चुका है, शायद वो पूर्ण निश्चय ही नहीं है कि वो आया है, वो आया है और अब वो जा भी रहा है, अब वो स्वयं को भी समेट रहा है, अब मुरलियां नहीं चल रही है, बाबा केवल मिलने आते हैं, बहलाने आते हैं। खुशी क्या है, खुशी के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, इस पर गहरी मुरलियां चल चुकी है 80s में, 90s में, 70s में। ऐसी फिलॉसफी, ऐसी साइकोलॉजी की बातें बाबा ने कह दी है जो किसी साइकोलॉजी की किताबों में नहीं है। कार्ल जंग और सिगमंड फ्राइड जो साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस के जनक है, वो इस फिलॉसफी के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी गुह्य बातें बाबा ने कह दी है। तो यदि हम अब भी विस्तार कर रहे हैं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। अब समय है तीव्र पुरुषार्थ का, अब समय है स्वयं को समेटने का, अब समय है ज्यादा से ज्यादा योगयुक्त हो जाने का। और जब तक योगयुक्त हमारी स्थिति नहीं, हम खुश नहीं रह सकते। ये कुछ कारण थे, कारण तो बहुत है, परंतु हम अभी सीधा इस पर आएंगे कि खुश कैसे रहे। ऐसी 10 बातें निकालेंगे सदा खुश रहने के लिए। बातें तो बहुत है, हम पॉइंट्स इसलिए सुनाते हैं ताकि याद रहे और हम उस पर काम कर सके। केवल खुश रहना है, खुश रहना है कहने से तो नहीं होगा ना, कुछ करना पड़े। बाबा ने कहा काम करो। कैसे कहा बाबा ने, देखा ना बाबा का स्वरूप कैसे था, काम करो। काम करना पड़ेगा पर खुशी से काम करो, मुस्कुराते हुए करो, हंसते हुए करो। बाप को भूला तो दुख पाया। तो कुछ बातें करनी होगी सदैव खुश रहने के लिए। सबसे पहली बात, बहुत ही सिंपल जो बात है, जो मुरली में ही आई है, मुस्कुराना, स्माइल। ये स्माइल जो ऐसी एक चीज है, ये फैलती है। खुश रहना ये दिखाई देता है स्माइल से, परंतु ये लक्षण है आंतरिक खुशी का। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि जब स्माइल है तो वो अंदर की खुशी को उत्पन्न करता है। दुखी हो जाना, दुखी दिखना, उदासीन रहना, ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा कहते उदास दास है, वो दास बनेंगे। अगर दुखी है, कारण ढूंढना और कारण को समाप्त करना है। क्यों मैं दुखी हूं? क्या कोई व्यक्ति मेरे दुख के लिए जिम्मेवार है या कोई परिस्थिति? वास्तव में हमारे दुख के लिए ना तो कोई व्यक्ति और ना तो कोई परिस्थिति जिम्मेवार है। हमारा दुख हमने निर्माण किया है, स्वरचित है वो दुख। स्वयं स्वयं को देखना। तो पहली एक जो विधि है, बाबा ने कहा मुस्कुराते रहो और हंसते रहो। परंतु ये मुस्कुराना, ये हंसना, बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है इसके लिए भी। अगर किसी माता को कहो कि दूसरी 10 माताओं के साथ एक ही कमरे में रहो, तो कितने ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है इसके लिए। इतना आसान काम नहीं है ये, बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। सारी पॉइंट्स याद रख के अप्लाई करनी पड़ेगी सिचुएशन को, तब कहीं जाके मुस्कान, खुशी, नहीं तो संघर्ष, अंतर्कलह, द्वंद, संघर्षों में टकराव, बोल में टकराव, स्वभाव में टकराव। परिवार एक, 4 लोग, 5 लोग रहते हैं, उनमें भी टकराव होता है। ज्ञान बहुत चाहिए। तो ये एक विधि है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये संकल्प कि हमें खुश रहना है। क्यों खुश रहना है? क्योंकि परमात्मा आज्ञा है, इसलिए खुश रहना है। कारण क्या है? आज्ञा है, ऑर्डर मिला है भगवान से। आज तक ऑर्डर के रूप में किसी ने नहीं कहा है खुश रहना। ये बात तो सदियों से लोग कहते आ रहे, परंतु संगम युग पर परमात्मा आदेश है। एक दूसरा भी बाबा ने एक 95 की मुरली में आदेश ऐसा ही दिया था, तुम्हें सहन करना है क्योंकि ये बाप का आदेश है। सहन क्यों करना है? इसके बहुत सारे कारण हमें पता है, पर एक कारण उसका बाबा ने यह भी कहा है, क्यों सहन करना है? परमात्मा आदेश है, सहन करो। दो मार्ग बताते हैं संसार में, एक है अध्यात्म का मार्ग, एक है संसार का मार्ग। दोनों ही मार्ग कठिन है, दोनों ही मार्ग पर जलना है। संसार के मार्ग में भी जलना है तो अध्यात्म के मार्ग में भी जलना है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म के मार्ग में परीक्षाएं नहीं है, या फिर उससे भी ज्यादा परीक्षा है तो यहां है, ब्राह्मण बनने के बाद। तब तक तो इतनी परीक्षाएं नहीं थी, परंतु दोनों मार्ग में एक मूलभूत भेद है। संसार के मार्ग में जल के जल के जल के जल के व्यक्ति राख बन जाता है। अध्यात्म में भी जलना है, परंतु यहां जल के जल के व्यक्ति एक दिन हीरा बन जाता है जो जगत को प्रकाशित करता है। तो ऐसा हीरा हमें बनना है, उसके लिए ये आदेश है भगवान का। तो एक प्रतिज्ञा, आज 21 तारीख है, 21 तारीख के दिन एक प्रतिज्ञा करते हैं अगले 21 दिन के लिए, अगले 21 दिन के लिए। विदेश में 21 शब्द 21 दिनों पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। क्यों 21 दिन? बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। एक बात बताई है जो कि हमारे माइंड को एडजस्ट होने के लिए 21 दिन लगते हैं। जैसे एक सर्जन थे, उन्होंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स पर प्रयोग किए कि जिनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, फेस की, फेस लिफ्ट सर्जरी जिसे कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा बदलता है थोड़ा, उस नए चेहरे को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को 21 दिन लगते हैं। उसने अपने खोज रिसर्च में ये बात बताई। दूसरा, उसने देखा जिन पेशेंट्स का पैर काटा जाता है, किसी भी कारण से सड़ गया है, गैंग्रीन हो गया है या कुछ भी हो गया है, फिर उनको एक नया पैर लगाया जाता है, फैंटम लिम। वो अगर पैर कटा हुआ है बहुत समय तक और उसके बाद जब नया पैर लगता है, उनको यही लगता है कि अभी भी पैर नहीं है। उस नए पैर को स्वीकार करने के लिए भी 21 दिन जैसे लगते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे कमरे में, दूसरे घर में रहने के लिए, उसमें कुछ दूसरी थियरी है। कोई कहते हैं 3 दिन लगते हैं सेट होने के लिए, चौथे दिन फिर अच्छे से नींद आती है नई नए स्थान पर। परंतु एक्सटेंडेड रिसर्च कहता है टोटल एडजस्टमेंट के लिए लगभग 21 दिन लगते हैं। तो ये जो इस तरह के रिसर्च है, 21 दिन के लिए हम एक प्रयोग करेंगे कि 21 दिन तक रोना नहीं है, चाहे कितने भी रुलाने वाले आ जाए, चाहे कैसी भी विकराल परिस्थितियां आ जाए, क्योंकि परमात्मा आदेश है खुशी के महल भव, जगमगाते हुए महल, हमारी खुशी कम ना हो। उसके लिए फिर हमें जो कुछ भी करना है हम करेंगे। ऐसा नहीं होगा केवल संकल्प करके नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम करो, रिजल्ट लाओ, तो काम भी करना पड़ेगा कुछ। तो एक तो कहा स्माइल, दूसरा है किसी को मदद करना। क्या मदद करेंगे? ब्राह्मणों की तो मदद करनी ही है, पर दूसरी आत्माओं की भी मदद करनी, अपरिचित आत्माओं की भी मदद करनी। क्योंकि जैसे ही किसी की मदद की जाती है दिल में खुशी होती है, परंतु निस्वार्थ हो। हमारा कोई एडमिट नहीं है हॉस्पिटल में, परंतु हम जाकर किसी को एक फूल देके आ जाए तो खुशी होती है ना। कोई चीज हमें आती है दूसरे को नहीं आती है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, हम यदि किसी को कुछ बता दे, हेल्प कर दे, तो खुशी होगी। किसी के पास बहुत ज्यादा जरूरतमंद है और बिल्कुल भी कोई चीज वस्तु नहीं है और उसे बहुत चाहिए और उस समय हम उसकी मदद करते तो खुशी होगी। दूसरों को मदद करने की नेचर बनाना। कार में बैठे हैं तीन लोग, दोनों कहते हैं हमको विंडो सीट चाहिए, हम बीच में बैठ जाना, ये भी एक सूक्ष्म त्याग है, ये भी एक मदद ही तो है। मदद करना आत्माओं को, आसपास वालों को मदद करना, किसको मदद चाहिए और उसे वो दे देना, जरूरत के समय मदद करना। और सबसे बड़ी मदद है समय, अपना समय देना किसी को। हम सब दे सकते परंतु समय नहीं दे सकते। अगर हम किसी को समय दे, चाहे परिवार वाले या और कोई, तो खुशी होती है। तो खुश होने का दूसरी विधि क्या है? मदद करना। बाबा जिसको मुरलियों में कहते हैं दान करो, बाहर वालों के लिए दान, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग, ये भी एक शक्ति है, सहयोग की शक्ति। हर चीज में, यज्ञ के कार्य में सहयोग देना, तन मन धन सब रीति से, सब विधि से। यदि किसी को स्थूल में नहीं दे सकते तो मनसा से सहयोग देना। जब भी सेंटर पर कोई प्रोग्राम हो, अमृत वेले जो आत्माएं आने वाली है उन सबको इमर्ज करके सकाश। यदि बाहर कोई प्रोग्राम है वहां की आत्माओं को इमर्ज करके सकाश। मदद करना सूक्ष्म में, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, यह भी बहुत बड़ी मदद है। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, फिर से हम बैठ जाएं और जो प्रतिज्ञा हमने बताई कि बाबा कुछ भी हो जाए अगले 21 दिन के लिए आज से खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। लंबे समय से बैठने के बाद थोड़े से पैरों में दर्द होने लगता है माताओं को, तो थोड़ा उठ जाएंगे परंतु ज्यादा समय नहीं, 5-10 मिनट केवल, और फिर आके बैठेंगे और फिर कुछ दूसरे जो विधि है खुश रहने की उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओम शांति।